शेर है दिलेर है, स्वर में तेरे एक ललकार है, स्वर में तेरे एक ललकार है, शेर है दिलेर है, तू शेर है दिलेर है। तेरी चाल एक कहानी है, वज्र ध्वनि से तेरी वाणी है, तू चलता तो मिटे भ्रांति है, तू गरजे तो जगे क्रांति है, रग रग में तेरे आग है, सांसों में एक पुकार है, तू शेर है दिलेर है, तू शेर है दिलेर है।
ओम शांति। शास्त्रों में वर्णित एक कहानी से इस भट्टी का आरंभ करेंगे, और हो सकता है आपने वो सुनी है। एक युवा सन्यासी वन में अकेला तपस्या कर रहा था। तीव्र वैराग्य संसार के प्रति संपूर्ण रीति अनासक्त, ऐसा एक युवक, ऐसा एक ब्रह्मचारी तपस्या कर रहा था, और उसी वन में एक दूसरे ऋषि का आश्रम था जिसकी एक कन्या भी थी, वो भी तपस्विनी ही थी। एक दिन उस ऋषि कन्या ने इस युवा सन्यासी को देखा। वो सन्यासी अति तपस्वी तेजस्वी था। उस ऋषि कन्या के मन में आया कि इस तपस्वी की सेवा करनी चाहिए, योगियों की सेवा एक महान पुण्य कर्म है, पर उसके मन में था कि वो उस सन्यासी की तपस्या भंग ना करे, इसलिए जो कुछ करना है वो गुप्त रीति से करना है। वो सन्यासी सुबह ध्यान करता, फिर नदी के तट पर जाता, फिर दिन भर आकर फिर ध्यान करता, दोपहर में फल खाता, शाम को फिर नदी तट पर जाता, फिर फल खाता, रात में सो जाता, फिर सुबह उठता, फिर दिन भर तपस्या। ऐसी उसकी दिनचर्या थी। वो ऋषि कन्या देखती है और उसके मन में आता है कि कुछ सेवा की जाए, तो जब वो नदी पर जाता है उसके सामने उसके आश्रम में कुटिया में वो फल रख देती है जहाँ वो तपस्या करता है उसके आगे। वो युवा सन्यासी आता है और चुपचाप फल खाता है, कभी पूछता नहीं, कोई भी देखता नहीं किसने रखे, जैसे अनासक्त है। कभी वो कन्या उस जमीन को साफ कर देती, कभी फूलों से सजा देती, अलग अलग तरीके से वो चाहती थी कि उसकी मदद की जाए, उसकी तपस्या में सहयोगी बने। पर उसने ध्यान ये रखा था कि वो स्वयं उस सन्यासी की नज़र में कहीं ना आए। एक दिन सन्यासी तपस्या में मगन था, उसी समय वो कन्या आती है और उसके सामने फल रखती है। थोड़ा सा आवाज़ होता है, सन्यासी की आँख खुलती है और वो उस कन्या को देख लेता है और फिर आँख बंद कर देता है और तपस्या चालू करता है। वो ऋषि कन्या वहाँ से चली जाती है, पर आत्मग्लानि से भर जाती है कि शायद मैंने उस सन्यासी की तपस्या भंग कर दी क्योंकि उसने मुझे देख लिया। वो अपने कुटिया में जाती है, रात भर सो नहीं पाती है। सुबह संकल्प करती है कि अभी मुझे इस वन को छोड़कर ही चला जाना चाहिए और वो सुबह सुबह उस वन को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। सन्यासी अपनी तपस्या और गहरी करता है, धीरे धीरे फलों को छोड़ देता है, पत्तों पर रहता है, बाद में पत्तों को भी छोड़ देता है और लंबा लंबा समय ध्यान में बिताता है। पानी पर आ जाता है, धीरे धीरे उसको भी छोड़ देता है और केवल तप में विलीन रहता है दिन रात सब कुछ छोड़कर। तपस्या गहरी होने लगती है, पूरा मिट्टी का पर्वत जैसा बन जाता है उसके ऊपर। और जब भी धरती पर कोई तपस्या करता है तो शास्त्रों में दिखाया है सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी किसको होती है? इंद्र को, डिपार्टमेंटल इनसिक्योरिटी। उसे लगता है मेरी पोजीशन खतरे में है। वो अपनी अप्सराओं को भेजता है, कोई प्रभाव नहीं। सिंहासन डोलने लगता है, इंद्र स्वयं प्रकट होता है और कहता है तुम्हें क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी तपस्या से। क्या तुम्हें स्वर्ग चाहिए? वो सन्यासी आंखें खोलता है, देखता है, प्रणाम करता है। इंद्र पूछता है क्या तुम्हें स्वर्ग चाहिए? मैं स्वर्ग देने को भी तैयार हूँ, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। वो कहता है मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। इंद्र को आश्चर्य होता है, इसे स्वर्ग नहीं चाहिए? इंद्र कहता है क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए? मैं तुम्हें मोक्ष दे सकता हूँ, सदा के लिए मुक्ति। वो कहता है मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। इंद्र को आश्चर्य होता है फिर ये तपस्या किस लिए है इतनी घनघोर? और वो सन्यासी से पूछता है तुम्हें चाहिए क्या? वो युवा सन्यासी कहता है वो कन्या कहाँ है? वो कन्या कहाँ है? कहानी पूरी हुई। वासना सूक्ष्म है, किस मार्ग से, किस समय, किसके द्वारा, कहाँ से वो भीतर घुस जाए पता नहीं चलता। इसलिए सदा अलर्ट। बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े तपस्वी और बड़े बड़े सन्यासी जो गिर गए, क्यों गिरे, क्यों गिरे? इस एक तृष्णा के कारण, इस एक वासना के कारण। उस सन्यासी ने केवल एक ही बार उस स्त्री को देखा था, पर वो एक बार का दर्शन इतना भीतर चला गया कि सारी तपस्या का लक्ष्य वो स्त्री हो गई। तपस्या रह गई बाजू, सकाम तपस्या। तो कुमार जीवन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। अगर इस जीवन में हम कहीं फंस गए, कहीं अटक गए, तो आगे की यात्रा कठिन हो जाती है। अकेला चलना ही कठिन है। अगर कोई साथ में आ जाए तो वो रस्सी वाला, वो बोरी वाला खेल देखा है? एक व्यक्ति एक पैर रखता है, एक दूसरा डालता है उस बोरी में, और बोरी पकड़ के चलते हैं। उसमें गिरने की संभावना बहुत अधिक है। तो कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन, महान जीवन, इस जीवन में क्या करना है ये पहले स्पष्ट हो। तो आप सब यहाँ आए तो आज का पूरा दिन, कल का आधा दिन पूर्ण रूपेण यहाँ उपस्थित रहना है। सबने अपना मोबाइल सबमिट कर दिया, वो मोबाइल आपको अभी कल मिलेगा, भट्टी पूरी होने के बाद। तब तक उस दुनिया से कट ऑफ, इसलिए अभी कोई ऑप्शन नहीं रहा है। हम एक जगह भट्टी करने गए थे, कभी कुमार आए थे, भट्टी से पहले एक कुमार आया और वो कहने लगा, एक मास के बाद मेरी शादी है, भट्टी अटेंड करूं या नहीं? हमने कहा खतरा बहुत है, तुम्हारे ऊपर है। सबके पास डायरी होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, है सबके पास? उसमें लिखना है डेट, डे 1/2। जिनके पास नहीं है उनको डायरी या पेन दे दिया जाए, डायरी और पेन। उसके ऊपर लिखो कुमार भट्टी, डे 1/2, आज की तारीख, गुलजार उपवन, लखनऊ, टाइम। एक भूमिका क्रिएट करनी है। जिनके पास पेन डायरी नहीं है वो ले लेंगे। पिछले 6 मास में वो कौन सी बात है जो हमें डिस्टर्ब कर रही है, उसका चित्र बनाएंगे। लिखना नहीं है, उसका चित्र बनाना है। यदि वो कोई विकार है तो उस विकार का चित्र, जैसे कि काली रात, जैसे कि अंधेरा। यदि वो मोबाइल है तो उसका चित्र अपने मन को, जो पिछले 6 मास से जो डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे हो रहे हैं, उसका चित्र बनाने की कोशिश करनी है। देखो क्या चित्र बनेगा। सभी के पास डायरी हो, जिनके पास नहीं है वो ले लो। इस भट्टी में बैठना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे काम दिए जाएंगे। सबके पास हो गई डायरी? किसके पास नहीं है? डायरी ले लीजिए, खत्म हो गई अभी तो दे दो। चित्र बनाना है अपनी कमजोरी का चित्र। कुछ भी हो सकता है, एक मार्ग जो टूट गया है, कुछ भी हो सकता है, मोबाइल, या कुछ और, कोई संबंध जिसमें उतार चढ़ाव है, करियर इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, एनीथिंग, उसको एक मूर्त रूप देना है। हर एक का अपना अपना। सबको मिल गई डायरी? इधर नहीं मिली। जब भी क्लास में जाओ, सेंटर पर जाओ, भट्टी में जाओ, मधुबन में जाओ, हमारे पास एक स्टडी किट होना चाहिए जिसमें एक डायरी हो, और डायरी भी बड़ी डायरी, छोटी डायरी नहीं, अच्छी डायरी, जिसमें कलर पेंस हो, पेंसिल्स हो, स्केच पेन हो, इरेजर हो, रबर हो, स्केल हो, बोर्ड हो सके तो जेल पेन, बॉल पेन नहीं। और जो नोट्स आप लिखेंगे यहाँ पर, जो चित्र बनाएंगे, उनको अच्छी तरह से बनाना है। जो नोट्स लिखेंगे, पूरा के पूरा कुछ नहीं लिखना है, मेन मेन पॉइंट्स लिखने हैं, और सुंदर अक्षरों में, जैसे ये अक्षर है प्रिंट, जैसे वो दिखाई दे रहा है ना, वो जितना स्पष्ट दिखाई दे रहा है उतना स्पष्ट। इसलिए धीरे धीरे लिखना भी है, सुनना भी है, और साथ साथ अपने जीवन में डुबकी लगा कर देखना है मैं कहाँ खड़ा हूँ, और साथ साथ किरणें भी लेते रहना है ऊपर से। सोचो अगले 2 दिन एब्सोल्यूट साइलेंस का अनुभव करना है, आपस में बातचीत पूर्ण रूपेण बंद, यहाँ क्लास में भी चुप, भोजन करते हैं तब भी चुप, कमरे में जाते हैं तब भी चुप, और बीच बीच में जब जब समय मिले इस पूरे परिसर में एकांत में घूमना है। सोचो उस संसार से अभी पूर्ण तरह से कट ऑफ है आप, एक दूसरे जगत में प्रवेश कर रहे हैं जहां केवल मौन है, पूर्ण एकांत है। जो काम करो वो चुप होकर, अगर दूसरा बात करता है तो हम चुप ही रहे, आपस में बातचीत पूर्ण रूपेण बंद। जो अत्यधिक आवश्यक है वहाँ बोलना है, और हो सके तो केवल साधना संबंधित, क्योंकि सुनने सुनाने का समय जा चुका है, अभी करने का समय है। तो सबका चित्र बन के हो गया, और यहाँ से जाने के बाद अच्छी डायरी हो सबके पास, बड़ी डायरी, और एक काम, यहाँ से आज रात को जो जो दिन भर हुआ उसके बारे में लिखना है, आज क्या क्या हुआ, डायरी राइटिंग की हैबिट डालनी है। वो ये डायरी नहीं होगी, दूसरी डायरी होगी, वो आज से प्लानिंग करके रखो, एक बड़ी डायरी हो जो हमारी डेली डायरी हो, उसमें डेट होगी, रात को सोने से पहले लिखना है, याद का चार्ट नहीं, लिखना है ये हुआ ये हुआ, आज यहाँ गए थे, जो कुछ हुआ, लास्ट में गुड नाइट बाबा। सबका हो गया होगा तो रोक देंगे लिखना, सुनते रहना है, और साथ साथ अपने जीवन को देखते रहना है। तो सभी एक बार आंखें बंद करेंगे और अपने आंखों के सामने एक स्क्रीन लाएंगे, और उस स्क्रीन पर अपने पूर्ण जीवन को देखेंगे, बचपन, उस घर को देखेंगे जहां हमने जन्म लिया, डाउन द मेमोरी लेन, उस गांव को, उस शहर को, माँ बाप को, विजुलाइज करेंगे बचपन के वो दिन, वो गांव, वो शहर, वो समय जहां से इस जीवन की यात्रा की शुरुआत की। आगे स्कूल, वो पाठशाला जहां हम जाते थे, वो मित्र, वो शिक्षक, वो पढ़ाई, या फिर बचपन का वो सारा समय, हमने क्या किया और आगे बचपन के अनुभव, गलतियां, और आगे कॉलेज में यदि गए हो तो कॉलेज, यदि बिजनेस है तो बिजनेस, या सेंटर पर चले गए तो सेंटर, वो समय भी देखेंगे जब भगवान का परिचय मिला था पहली बार, वो खुशी, वो वैराग्य, वो नशा, वो कोर्स जो हमने किया पहली बार, जो मेडिटेशन किया, वो जीवन का पहला अमृत वेला, वो पहली मुरली, वो पहला भोजन, वो प्रथम ब्राह्मण परिवार से मुलाकात, वो पहली बार ट्रेन, मधुबन, बाबा मिलन, साइट सीइंग, वो खुशी, वो आनंद, वो सेवा केंद्रों पर सेवा, सब आंखों के सामने लाएंगे, याद करेंगे माया ने कब कब मुझे हराया, मैं भ्रमित हुआ, भटक गया अपने मार्ग से, वो सारे संकट के पल जब भगवान ने मेरी रक्षा की, मुझे पूरी तरह गिरने से बचाया। अब आ जाएंगे अपने वर्तमान स्थान पर जहां आप रहते हैं, उस घर को देखेंगे बाहर से अंदर तक, उस बिस्तर को देखेंगे जहां आप सोते हैं, घर के लोग या सेवा केंद्र या ऑफिस, अपनी पूरी रोज की दिनचर्या, सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं, और फिर यहां कैसे पहुंचे, कैसे आए और क्यों आए, वापस चेतना को इस हॉल में लेके आएंगे, ओम शांति। डायरी में लिखेंगे एक्टिविटी नंबर 2, आपकी जो दिनचर्या है टाइम सहित, उस वो लिखेंगे जहां से आप आए हैं वहां की दिनचर्या, सुबह कितने बजे उठते हैं सामने लिखेंगे अमृत वेला, फिर उसके बाद क्या करते हैं 5 से 6, 6 से 7, दिनचर्या कैसी है, एक शॉर्ट में रिव्यू दिनचर्या का रात्रि तक का। कभी इमरजेंसी हो तो अलग, पर जो सामान्य दिनचर्या है उसको लिखेंगे। मन बहुत से काम नहीं करना चाहता है, आज वो सारे काम हम करेंगे। मन कहता है ये नहीं करना, यहाँ बैठे हैं तो इच्छा होती है यहाँ से उठ के जाए, और जहाँ उठ के जाते हैं वहाँ से इच्छा होती है और कहीं जाए। कितने बजे सोते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी, तो आज का सबसे पहला विषय है कुमार जीवन की गृहस्थी। अभी अभी हम एक जगह गए थे, वहाँ पर कुमार भट्टी थी, और उस कुमार भट्टी में लगभग 300 से 400 प्रश्न कुमारों के थे। ऐसा कोई प्रश्न नहीं था उसमें जो सोचा नहीं जा सकता, हर प्रकार के प्रश्न थे। छोटे कुमार थे, बड़े कुमार थे, 30 साल वाले थे, 40 साल वाले थे, जॉब करने वाले थे, सेंटर वाले थे, सेंटर में जो पहले थे अभी बाहर है वो थे, इंटरनेट से लेके तो गूगल से लेके तो यूट्यूब से लेके, अश्लीलता से लेके तो वल्गैरिटी से लेके, रिलेशंस और ब्रेकअप्स, हर प्रकार का प्रश्न था उसमें। युवा एक ऊर्जा है, अगर इस ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ दिया जाए तो विनाश हो जाता है, पर यही ऊर्जा यदि सही दिशा में हो तो रचनात्मक कार्य हो सकते हैं। इस ऊर्जा का हम क्या कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपने उस सन्यासी की कहानी सुनी होगी जो अकेला रहता था और उसे चूहे परेशान करते थे। गांव वाले ने क्या कहा, फिर आप एक लो, एक बिल्ली रख लो। उसने कहा बिल्ली को कौन पालेगा, कौन सब करेगा। गांव वाले ने कहा आप चिंता मत करो, हम सब कुछ करेंगे। तो बिल्ली आ गई, क्योंकि चूहे डिस्टर्ब करते थे वो दूर रहता था, पर बिल्ली को अब दूध चाहिए, दूध कहाँ से लाए। गांव वाले ने कहा दूध की चिंता आप मत करो, हम दूध सप्लाई करेंगे। एक माता है, उसकी गाय है, उसकी गायों का दूध आएगा, और उसकी एक गाय लेके आ गए आश्रम में, उसकी कुटिया में। पर अब गाय की देखभाल कौन करेगा, तो जिसकी गाय थी वही देखभाल करेगी, तो उस माता को लेके आ गए जिसका पति मर चुका था। वो अकेली थी, कोई संतान नहीं थी, और फिर सन्यासी तपस्या करने लगा, पर वहाँ एक स्त्री आ गई, तो फिर उसका भोजन, वो अपना भोजन बनाने लगी, और जब अपना भोजन बनाने लगी तो देख रही है सन्यासी भी है, उसको भी भोजन थोड़ा देने लगी, फिर दोनों का इंटरेक्शन्स होने लगे और दोनों को दोनों पसंद आने लगे। सोचने लगे साथ साथ ही तपस्या की जाए, दोनों शादी कर लेते और दोनों साथ साथ तपस्या करते, फिर बच्चे भी हो जाते। और संसार खड़ा हो जाता है, जिस संसार को छोड़ा था वो यहां फिर से स्टैब्लिश हो गया। संन्यास किस लिए लिया था, ये सबसे छूटने के लिए, और वहाँ वो फिर से सब तैयार हो गया। इसीलिए वो बूढ़ा गुरु अपने शिष्य से कहता है, सब कुछ करना जीवन में पर बिल्ली को मत पालना, बस ये एक ही परहेज है। क्योंकि बिल्ली को अगर पाला तो बिल्ली के लिए फिर दूध, और दूध के लिए फिर गाय, और गाय को देखने वाली स्त्री, चारा और पूरी गृहस्थी खड़ी हो जाएगी। इसलिए कुमार जीवन अर्थात स्वतंत्र जीवन, अगर उस स्वतंत्रता में हम बंधन खड़े कर देते हैं तो फिर हम में और संसार के व्यक्ति में क्या भेद। एक गृहस्थी भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मेरा कुछ करो, आपने कहा था आप करेंगे कुछ, भगवान प्रकट हो जाते हैं, कहते बोल तुझे क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हूँ। वो कहता है, मैं गृहस्थी हूँ, मुझे वापस कुमार बना दो। भगवान कहता है, मैंने तुमको मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत नहीं। तो कुमार जीवन क्या है? जन्नत, स्वतंत्रता। और गृहस्थी जीवन क्या है? बंधन, बोझ। एक बार उसमें चले गए तो फिर निकलने का कोई चांस ही नहीं है। नए नए बंधन चालू होने लगते हैं, चालू होने लगते हैं। कितने ऐसे कुमार हमने देखे हैं। हम एक सेंटर पर थे, वहाँ एक छोटा सा कुमार था जो सेंटर से हमारे लिए टिफ़िन लाता था। एकदम छोटा सा कुमार, छोटा लड़का, 5-6 साल का। इतना ज्ञानी, बड़े बड़ों को ज्ञान सुनाता था वो। सेंटर पर जो बड़े लोग आते थे, कई बार संदली पर बैठ के मुरली भी चलाता था। तो हम जहाँ थे पढ़ाई के लिए, अभी पता चला उसकी शादी भी हो गई और उसको बच्चे भी हो गए। जो ज्ञान योग को पकड़ के नहीं रखते वो भटक जाते हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ओम शांति भवन की स्टेज में, दादी प्रकाशमणि की गोद में जो खेले हैं, ड्रामा किए हैं, आज है ही नहीं, कहाँ खो गए पता नहीं, कहाँ चले गए। इसलिए मार्ग बड़ा कठिन है, कदम कदम पर सावधानी की आवश्यकता है, कदम कदम पर। थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो गिर गए। और इसीलिए यहां गृहस्थी खड़ी करनी नहीं है, उस संसार को हम छोड़ कर आए हैं, तो यहां वो सब ना हो जो उस संसार के लोग करते हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण बात है कि कुमारों का संगठन हो, छोटे छोटे संगठन हो। हर संडे आप लोग मिलो, आपस में बैठो और डिस्कस करो। टेलीग्राम में एक बहुत बड़ा ग्रुप है, सुना है किसी ने, ब्रह्मचर्य का? बीकेएस का नहीं है, बाहर वालों का ग्रुप है। आप अगर टेलीग्राम खोलो, उसमें सर्च में डालो ब्रह्मचर्य, बहुत बड़ा ग्रुप है एक, उसमें वो लोग हर संडे को मिलते हैं और डिस्कस करते हैं। और वो लोग आध्यात्मिक लोग भी नहीं है, पर डिस्कशन होता है उसमें, ढेर सारी बातें हैं, बहुत सारी किताबें उसमें हैं। आप जो चाहे वो किताब उसमें से डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उसको एक बार ज्वाइन कर लेना, देखना है उसमें भी लोग के क्या विचार है, क्यों कर रहे हैं वो ये सब। कुछ तो फायदा है इसलिए कर रहे होंगे। तो इस गृहस्थी से बचने के लिए आज के सत्र में हम 6 बातों की चर्चा करेंगे। हिंदी में शब्द है निसंग। निसंग अर्थात कोई संगी साथी नहीं। तो उसमें सबसे पहला शब्द है एन। एन में ही आता है निसंग, अर्थात एकला चालो। अकेले चलना है इस मार्ग में, मुझे कोई साथी मिल जाए, कोई खाना बनाने वाला मिल जाए, कोई दोस्त मिल जाए, ये बंधन क्रिएट करता है। ऊपर से तो लगता है बहुत अच्छा है फ्रेंडशिप, पर ये सारी जो फ्रेंडशिप क्रिएट होती है ये कहाँ से कहाँ ले जाती है। हमारे हॉस्पिटल में एक कुमार थे, बहुत अनन्य कुमार, जब हम नए नए आए, ऐसी तपस्या भयंकर, 1:30 बजे उठना, 2 बजे से पहले मधुबन पहुंचना, और उनको देखकर हम लोग भी लग गए, हम तो बहुत नए थे उस समय। फिर वो गए, MBBS हो गया था उसके बाद वहाँ थे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने वो गए। उन्होंने संकल्प किया था कि बस आऊँगा उधर से और बाबा के यज्ञ में सरेंडर। पोस्ट ग्रेजुएशन करने गए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, MD MS जो भी, और फिर फेसबुक पर किसी कन्या से दोस्ती हो गई, बीके फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप थोड़ी गहरी हो गई और फिर शादी हो गई। अभी भी ज्ञान में चलते हैं, पर यहाँ नहीं है, बाहर है कहीं, किसी मुरली में बाबा ने कहा था गंधर्व विवाह, उसमें कुछ ना कुछ दोष तो है। पहला दोष तो ये है कि कहना तो पड़ता है कि ये मेरी युगल है, चाहे दोनों ही ज्ञान में चल रहे हैं, पर बोलना तो पड़ता है। उसको अगर कुछ हो गया तो उसका देख उसकी देखभाल करनी पड़ती है, सारा उसके पीछे लगना पड़ता है। एक माता थी जो अनन्य माता थी, जिसका इकलौता बेटा था, और उसी माँ ने उस बेटे को कुमार बनाया और ज्ञान में लाया, और कुमार भी अनन्य था, पर माँ के मन में फिर इच्छा हुई कि मुझे बहू चाहिए। बेटे ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं शादी करूँगा, पर माँ तो माँ है, इमोशनल ब्लैकमेल, तुमको जैसी पसंद है वैसी, पर मुझे तो बहू चाहिए। तो बेटा फिर मान गया, बहू आ गई, पर बहू ऐसी कड़क, ऐसी खतरनाक, हर दिन झगड़े, जीना मुश्किल हो गया सबका। बेटे ने माँ से कहा तुमने ही तो कहा था ना बहू चाहिए, लो अब। माँ ने कहा मैंने कहा तो था, पर शादी की तो तुमने ना, मैंने तो केवल कहा था, की किसने, तुमने की, अब क्या करें। तो सबसे पहला सूत्र है अकेले हो जाना, निसंग, अकेले चलना है इस मार्ग पर। जैसे ही विचार आता है इसको साथी उसको साथी बनाओ, मूवी का ट्रेलर नहीं देखना है, पूरी मूवी देखनी है, थोड़ा सा नहीं देखना है, इतना सा हम देख लेते हैं ना, इसमें कितना बहुत अच्छा है, पर उसको खींच के आगे तक ले जाओ, आगे देखो वहाँ क्या है। उस दिन भी सुना रहे थे जोक, हाउ इज योर लव, वो कहती इट्स ओवर, व्हाई, वी आर मैरिड, कैसी हो, तुम्हारा प्यार कैसा है, तो प्यार खत्म हो गया, तो कैसे, शादी हो गई, हो पहले तक ही था, ये चालू हो गया अब खत्म। तो इस मार्ग में लक्ष्य रखना है कि मुझे अकेले ही आगे बढ़ना है, और बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए टाइम बहुत है, उस टाइम को सफल करना है, अध्ययन में, अपनी पढ़ाई में, अपने जॉब में, अपने करियर में, अपनी सेवाओं में और नवीनता में, कुछ ना कुछ नया करते रहना है, प्रकृति में, कुछ नई हॉबीज़ हो, कुछ नए प्रोजेक्ट्स हमारे पास हो जो हम सोचते रहे उसके विषय में क्या किया जाए, हमारे पास जो कला है, जो स्किल्स है, उसका कैसे हम उपयोग करें यज्ञ में। केरला में एक छोटा सा, एक 10वीं क्लास का बच्चा था, उसका नाम था अमल। आप इंटरनेट में बाद में सर्च करना अमल। तो उसने एक कहानी सुनी, चलते चलते कोई कहानी सुना रहा था। कहानी ऐसी थी कि समुद्र तट पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो जो मछली आती है स्टार फिश, लहरों के साथ तट पर, वो एक मछली को उठाता था और वापस डाल के रखता। वापस लहरें आती थी, ढेर सारी मछली आती है, वो एक मछली को उठाता, वापस समुद्र में डाल देता। एक व्यक्ति वहाँ आता है, तुम क्या कर रहे हो? कहते मछली को वापस डाल रहा हूँ। कहते कितनी मूर्खता है, इतनी सारी मछलियाँ हैं, क्या तुमको लगता है एक मछली से कुछ होने वाला है? तुम एक मछली जाके वापस समुद्र में डाल रही हो, बाकी तो तड़प तड़प के मर रही है। हाउ इट मैटर्स। वो व्यक्ति एक मछली को उठाता है, अपने हाथ में लेता है, कहता है इस इट मैटर्स टू हर, इसको फर्क पड़ता है, इस एक को। मैं सबको नहीं बचा सकता, इस एक को बचा सकता। बस ये कहानी वो एक छोटा 10वीं क्लास का लड़का सुनता है, अमल नाम का। उसके मन में आता है मैं कुछ करूँ, मैं कुछ करूँ। और वो केरला के उस छोटे से गांव में एक लाइब्रेरी बनाता है। कैसे लाइब्रेरी बनाता है? टिन, पत्थर, लकड़ियाँ जोड़ता है, घरों घरों में जाता है, सबसे कहता है कुछ किताबें हो तो दे दो, कुछ किताबें हो तो दे दो। सब तरफ से किताबें लाता है, वो किताबें जमाता है स्कूल के बच्चों के लिए लाइब्रेरी, और धीरे 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 वो लाइब्रेरी इतनी बढ़ जाती है, उस लाइब्रेरी में मैनेजर और फिर वो सब चालू हो जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने उस लाइब्रेरी को रिकॉग्नाइज किया है, स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए फ्री लाइब्रेरी, उसमें फ्री इंटरनेट से लेके फिर धीरे धीरे सब कुछ आ गया। उसी की एक ब्रांच उन्होंने फिर एमपी में जाके खोली, उसी की एक ब्रांच पंजाब में खोली। फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड चिल्ड्रन लाइब्रेरी। तो ये सब क्या है? क्रिएटिविटी। इसलिए हमारे पास जो स्किल्स है उसको देखना है, हम उसका क्या करें, कैसे उसको यूज़ करें इस यज्ञ के लिए, यज्ञ की सेवा के लिए। और हर एक के पास ऐसी ऐसी स्किल्स है जो और दूसरे के पास, किसी के पास नहीं है। हर एक हम में से किसी के पास बोलने की, किसी के पास लिखने की, क्रिएटिव राइटिंग, ड्राइंग, आर्ट, पेंटिंग, आईटी, ग्राफिक्स, कुछ भी। तो इस मार्ग में अकेले चलना है, परंतु ये अकेले चलने का मार्ग दुखी होकर चलने का मार्ग नहीं है, खुशी खुशी से चलना है। इसलिए एक छोटा सा संगठन हो कुमारों का, हर संडे मिले, हर संडे या तो भट्टी करो 9 से लेके 2 बजे तक, 10 से लेके 2 बजे तक टाइम निकाल कर। और उसमें क्या क्या करना है, जैसे अभी आप आके बैठे तो एक व्यक्ति सर्कल में बैठे, मुरली पढ़ो, थोड़ी देर प्लानिंग करो, थोड़ी देर योग करो, भोजन बनाना है तो भोजन बनाओ, सब कुछ करो और फिर जाओ। इसको एक रूटीन बनाना है हर संडे, और या तो थोड़ा सा मुरली डिस्कशन रोज, अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन जूम मीट, 4-5 लोग मिलो जिसकी कोई रिकॉर्डिंग ना हो, कुछ ना हो, बस खुद ही अपने लिए, तो ये काम होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है इंद्रिय जीत। तीन ही इंद्रिय है जो सबसे ज्यादा धोखा देती है, आँख, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय, आईज, टंग एंड जेनेटल्स। तो काम आंखों पर करना है। एक्टिविटी नंबर 3 लिखेंगे, डाउन कास्ट आइज। डाउन कास्ट आइस, नज़र नीचे। यहाँ से आप जाएंगे, अपना दिनचर्या चालू करेंगे, उसमें बीच बीच में प्रैक्टिस करना है, मार्केट से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं, प्रैक्टिस करना है नज़र नीचे और देखो क्या होता है। कुछ नहीं होता है, बहुत अच्छा होता है। अगर आप कमरे से निकल रहे हो ऑफिस तक और केवल स्थिर रही आंखें, इधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, उधर नहीं देखना, तो जो स्थिति घर पे थी ऑफिस में पहुंचने के बाद भी वही रहेगी, क्योंकि मन आंखों को भटकाया नहीं कहीं। इस अभ्यास को कहते हैं डाउन कास्ट आइस। हमने ये अभ्यास बहुत किया है। आपने नक्की झील देखा है ना, सबने नक्की झील का राउंड लगाओ, संकल्प करके जाते हैं कि ऊपर देखना ही नहीं है, नीचे देखते हुए जाना है। जिस संकल्प के साथ जाते हैं वैसे ही संकल्प से पहुंचते हैं, और बहुत खुशी होती है कि कितने लोग घूम रहे हैं, टूरिस्ट घूम रहे हैं, कैसे कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, कहीं आंखें जाती ही नहीं। तो ये एक प्रोटेक्टिव मेज़र है। हमसे कई लोगों ने, एक बीच में एक टीचर थे, उनसे हमारा कांटेक्ट हुआ था, तो वो ये कह रहे थे, उनकी उम्र 60-70 है, तो वो अभी अभी किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़े, तो हमारा उनसे डिस्कशन हो रहा था, तो कह रहे थे कि क्या कारण है कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ फिर भी फीमेल्स को देखते हैं तो अपने आप आंखें जाती है, शरीर पर आंखें जाती है, मेरा तो भाव इतना शुद्ध है। हमने उनको कहा था कि ये करो डाउन कास्ट आइस, तो उन्होंने कई दिनों तक किया। वो 60 के ऊपर उनकी उम्र है पर बहुत एक्टिव है, और उन्होंने अनुभव सुनाया था कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और कहा कि ये आप मुझे पहले अगर पता चलता तो बहुत अच्छा होता। अभ्यास है छोटा सा, आंखें नीचे, नज़र नीचे। सड़क पर जाओ तो बोर्ड दिखता है, ये दिखता है, वो हज़ारों चीज़ें दिखती है। हाँ, आप अगर कुछ किसी स्थान को खोज रहे हैं वो अलग, पर जो रूटीन मार्ग है रोज का ये, उसमें आवश्यक नहीं है। हाँ, आप नई जगह जा रहे हैं, आपको पता है ये क्या है, आपको वो पता करना है, वो अलग। पर जो रूटीन का मार्ग है रोज वही करना है, सेंटर पे रहते हो, सेंटर के बहुत सारे रास्ते वही रूट के हैं, तो ज़रूरत नहीं है। ऑफिस का मार्ग है डेली वही ट्रैक है, आवश्यक नहीं है। ऑफिस में काम करते हैं, अपने डिपार्टमेंट से कहीं और किचन में जाना है, डाइनिंग में जाना है, नज़र नीचे। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टेक्निक, डाउन कास्ट आइज, आंखें नहीं भटकती इससे। तो इसको एक्टिविटी 3, तो आज इसी कैंपस में घूमते हुए ये अभ्यास करना है। तो दूसरा है इंद्रिय जीत। इंद्रिय जीत में 5 बातें आती है, या स्वराज्य अधिकारी में 5 बातों को जीतना है। सबसे पहला शरीर, फिर इंद्रिय, मन, बुद्धि और संस्कार, इन 5 का कंट्रोल अर्थात स्वराज्य अधिकारी। शरीर का कंट्रोल क्या, अर्थात जैसे अभी बैठे हैं, हो सकता है पैरों में दर्द हो रहा है, उस दर्द को सहना, तितिक्षा, शारीरिक कष्ट को सहना, बीमार हो रहे, पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, उस दर्द को सहना, बारिश, तूफान, आंधी। हमें याद है एक बार हम बाइक से, 2-व्हीलर से ज्ञान सरोवर जा रहे थे, क्लास था कोई, अकेले थे, और अचानक बीच रास्ते में, बस अभी इतना अंधेरा हो गया पूरा, शाम का समय था, 6-7 के बीच, और इतनी तेज़ बारिश, केवल बारिश नहीं पूरा धुंध छा गई, हवा जोर से, तूफान जैसा वातावरण हो गया, पता ही नहीं चल रहा था कहाँ गाड़ी जा रही है, रोक दी, और इतना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी, इधर जाऊँ या इधर जाऊँ, इधर जाऊँ, किधर से जाऊँ, रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है, फागी पूरा, इधर से तेज़ हवा, पूरी गाड़ी गिर रही है। इतना अंधेरा छा गया तो हम रुक गए और फिर सोचने लगे एक बात कि जो शास्त्रों में लिखा है अस्तोमा सतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये किस तमस के लिए, किस अंधकार के लिए लिखा है? क्या इस अंधकार के लिए? क्या ऐसे तूफान और ऐसी बारिश और ऐसी आंधी मन में भी तो आती है जब कुछ भी दिखाई नहीं देता है? वो ऋषि मुनियों ने जो लिखा वो बाहर के लिए नहीं लिखा है, अंदर के लिए लिखा है। इसलिए डरना नहीं है, ना बाहर के तूफान से ना अंदर के तूफान से। हमें याद है हम शुरुआत शुरुआत में अकेले मधुबन जाते थे, 1:30-2 बजे हॉस्पिटल से निकलते थे, कई बार भालू मिल जाता था रास्ते में, हमें आदत नहीं थी, नए थे, करना क्या है, खड़े हो जाते थे बस, जब तक वो ना जाए तब तक 10 मिनट 15 मिनट वो चला जाता था फिर चले जाते थे। पर उससे एक हुआ, डर खत्म हुआ, अंधेरे का डर रहता है। पहले पहले नए आए थे तो नक्की में जहाँ से अंधेरा चालू होता है वो बीच से गणेश मंदिर हनुमान मंदिर के उधर से, वहाँ लाइटिंग नहीं होती थी उस समय, तो एक बार जा रहे थे वहीं रुक गए, आगे नहीं बढ़े। एक पुराने भाई थे महेश भाई जी, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया लिटरेचर वाले, उन्होंने पीछे से कहा क्यों रुक गए, डरते हो क्या, चलो आगे। उस व्यक्ति के एक लाइन ने इतनी शक्ति भर दी कि मैं क्यों डरता हूँ, रोज आता हूँ वहाँ तक निकल के वहाँ से चले जाता हूँ। 2-3 दिन ही हुए थे मधुबन में तो वहाँ तक जाते थे, वहाँ देखते थे पूरा अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों जाए यहाँ से वापस। और उन्होंने कहा तो फिर हमने सोचा हमको करना है, गए अकेले, कुछ नहीं हुआ, फिर रोज जाने लगे अंधेरे में। तो पहला है इस शरीर को वश में करना, अर्थात प्रकृति के जो वार होते हैं उससे डरना नहीं, बीमारियां होती है उससे डरना नहीं, फ्रैक्चर हुआ कुछ हुआ उससे डरना नहीं है, सहन करना पड़े बहुत कुछ उससे डरना नहीं है, ट्रेन में ट्रैवल सीट नहीं है खड़े रहकर उससे डरना नहीं है, ना दुखी होना है। दूसरा है इंद्रिया, पांचों आंखें नाक कान ये सारे, उनको वश में रखना, उनको भटकने नहीं देना। तो तीसरा मन बुद्धि और संस्कार, ये पांचों को जीतना अर्थात स्वराज्य अधिकारी। तो कुमार जीवन की दूसरी सबसे बड़ी साधना है इंद्रिय चीत बनना। हिंदी में एक शब्द है तितिक्षा, किसी को पता है इसका क्या अर्थ है? तितिक्षा, तितिक्षा सुना है किसी ने? सुना है क्या है अर्थ, क्या है? हाँ अर्थ नहीं पता है, शब्द सुना है। जैसे इंग्लिश में अलग अलग शब्द है, एक है टॉलरेंस, टॉलरेंस मतलब सहन करना, उसके ऊपर एक शब्द है फिर एंड्यूरेंस, ज़्यादा सहन करना, उसके भी ऊपर एक शब्द है फोरबेयरेंस, सब कुछ सहन करना, थोड़ा हायर लेवल, उसके ऊपर का शब्द जो संस्कृत का है वो है तितिक्षा। तितिक्षा अर्थात सारी परिस्थितियों को सहन करना, सूक्ष्म नहीं स्थूल, धूप आंधी तूफान, बहुत मेहनत करा रहे, जैसे गुलाम होते थे ना पुराने ज़माने में, उन गुलामों से कितनी मेहनत कराते थे, दिन रात खड़े रखते थे उनको, बहुत मेहनत कराई जाती थी। तो सहन करना। तीसरा सूत्र है एस साइलेंस, मौन में बहुत 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 पावर है, एक्सट्रीम पावर। जितना हम मौन रहते हैं, और बीच बीच में, ऐसा नहीं कि पूरा दिन मिल जाए आपको चुप रहने के लिए, बीच बीच में इंटरमिटेंट साइलेंस, जैसे आप 9 बजे जाते हैं 5 बजे वापस आते हैं, 9 बजे तक मौन, 5 बजे के बाद फिर मौन, चुप, या बीच में जो टाइम मिलता है लंच का या और कुछ हो सके तो वह लंच अकेले में लो, 4-5 लोग होंगे तो बातें चलती है, फिर चुप। तो तीसरा साइलेंस। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे वो एक मठ में गए, मठ का नाम था ट्रैपिस्ट मोनेस्ट्री। उन्होंने देखा वहाँ के आश्रम में जितने लोग हैं सब मौन में हैं, चुपचाप, आश्रम निवासी। उनको आश्चर्य हुआ, वो मठाध्यक्ष के पास गए, हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, और पूछने लगा ये कैसा नियम है आपके आश्रम का, यहाँ सबके सब साइलेंट है। उन्होंने कहा कि देखो मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो क्या करता है, मौन है, पर वो करता क्या है, सत्य को किस को या तो दबाता है या अतिशयोक्ति करता है या छेड़छाड़ करता है, या 2-3 काम करता है सत्य के साथ। इसलिए अंदर से जो आवाज़ आ रही है मौन की एक अंतस चेतना से, वो सुनाई उसको नहीं देती है क्योंकि वो बाहर ही ज़्यादा रहता है। इसलिए हमने इस आश्रम का नियम बना के रखा है कि जो भी यहाँ आएगा मौन व्रत धारण करेगा, नहीं तो वो अंदर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसलिए नियम क्या बनाना है, इंटरमिटेंट साइलेंस का। अगर हो सके तो बीच में अपनी एक भट्टी करनी है पूरे दिन की, अकेले की, कहीं जा सके तो कहीं चले जाओ, बाइक लेके चले जाओ, दिन भर रहो प्रकृति के सानिध्य में, शाम को आ जाओ अकेले। कई सालों से हमने यही काम किया है, हर संडे आबू में इतनी पहाड़ियाँ है, जो लोग 40 साल से आबू में रह रहे हैं अभी तक उनका पूरा आबू देख के नहीं हुआ है, इतनी गहरी गहरी गुफाएं और पहाड़ियाँ हैं, इतनी अंदर 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 कुछ कुछ है। जो लोग तो आप जो बाहर से आते हैं वो थोड़ा सा घूम लेते हैं चले जाते, एक एक छोटा छोटा रास्ता कहाँ कहाँ जाता है, इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं। और हर अभी हम इतने साल हो गए फिर भी अभी तक कितनी सारी जगह है जहाँ हम पहुँचे ही नहीं, ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ एकांत है, जहाँ मौन है, प्रकृति है। सुबह जाओ, दिन भर बिताओ, शाम को आ जाओ छुट्टी के दिन। और प्राणिक एनर्जी बहुत रहती है वहाँ पर, प्राणिक फील्ड, प्राण ऊर्जा, जितना स्थान खतरनाक उतनी अधिक ऊर्जा वहाँ होती है। मिट्टी में अपने आप को किसी ने गाड़ा है क्या, यहाँ तक वो सिर खाली ऊपर जमीन में शरीर किया है क्या, ये भी प्राणिक ऊर्जा का एक्सपेरिमेंट है। पत्थर सिंकिंग इनटू स्टोन, रॉक्स, झाड़ को पकड़ना, प्रकृति से जुड़ना, जैसे किसान होता है ना, उसके नंगे पाँव जमीन से जुड़ते हैं, सारी रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन हो जाता है फ्री, सारे चक्र है पैरों के नीचे वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये काम करना है साइलेंस का, और वो साइलेंस में प्रकृति में जाओ, बैठो, घूमो, कुछ लिखो, डायरी ले जाओ। सबसे पहले कहा एक स्टडी किट होनी चाहिए, हमारे भट्टी के लिए आते हैं तो बिना वो सब के आना ही नहीं है पहली बात, तो अगली बार से जब मधुबन जाओ एक अच्छी डायरी होनी चाहिए, डायरी भी बड़ी होनी चाहिए, छोटी छोटी डायरी नहीं, इतनी इतनी वाली नहीं, आधा खुलने वाली नहीं, पूरा खुलने वाली, जेल पेन होना चाहिए, और बहुत सुलेख में लिखना है, एक एक अक्षर सुंदर, जैसा दिख रहा है वहाँ पे शिरोरेखा बिल्कुल स्ट्रेट, वो यो य देखो कैसा है, बिल्कुल शार्प है य, उसको ऐसे नहीं घुमाना है, वो त देखो कैसा है, वो प देखो कैसा है, वो भ देखो, भ को शिरोरेखा टच नहीं करती है, नुक्ता कहाँ लग रहा है, सुलेख सुंदर दिखना चाहिए हमारे नोट्स। यू शुड फॉल इन लव विथ योर ओन हैंड राइटिंग। क्या करना है, अपने ही हैंड राइटिंग के से मोह हो जाए, प्यार हो जाए, दूर से कोई देखे तो वो पढ़ सके, इतना वो स्पष्ट हो, इतना वो सुंदर हो, इतनी वो सुंदर हो। तो इसलिए धीरे धीरे रोज एक अभ्यास और दे रहे, लिखिए एक्टिविटी नंबर कितना, फोर। रोज एक पेज आपको क्या लिखना है? अ आ ई ई, क ख, पूरा एक पेज। क लिखो तो दोनों क दोनों सेम हो। ब लिखो तो ब का पेट अच्छे से काटना, बीच से नहीं, बाजू से। ए लिखो तो सुंदर ए। यहाँ बोर्ड है क्या अपने पास धीरज भाई? स्केच पेन या बोर्ड यहाँ लगा सकते हैं? तो ये एक काम है। ये हम क्यों बता रहे हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है। जब हम अपने हस्ताक्षर को बदलते हैं, हमारी पर्सनैलिटी बदलती है अपने आप। और आप जल्दी जल्दी में अच्छे से नहीं लिख सकते, आपको धीरे ही लिखना पड़ेगा, स्लोली लिखना पड़ेगा, तो वो काम होगा। तो वो जो जल्दबाजी का स्वभाव है वो अपने आप शांत हो जाएगा, स्लोली 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 स्लोली। तो अपनी डायरी खोलेंगे अभी, उसमें एक लाइन लिखेंगे, मैं आत्मा हूँ। पर मैं जो है वो मैं बहुत अच्छा वाला मैं होना चाहिए, उसकी जो मात्राएं है वो बड़ी सुंदर होनी चाहिए, उसका जो बिंदु है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अ का अ, अ के ऊपर शिरोरेखा नहीं आएगी, उससे नीचे से चालू होगी। आ त मा हूँ हूँ। देखो ह कैसा है, प्रॉपर हाँ होना चाहिए। तो एक एक अक्षर। तो रोज एक काम करना है, 12 खड़ी एक बार लिखना है, ठीक है? तो ये काम होना चाहिए। ये करते करते व्यक्तित्व परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि हमें एक आदत पड़ गई है वैसा ही लिखने की। हम ऐसा ही लिखते हैं, वैसा ही लिखते हैं। टेररिस्ट की स्टडीज की गई, उनका ई ऐसा ऐसा ऐसा, उसमें हिंसा दिखाई देती है शब्दों में, शब्दों में आक्रामक शब्द होते हैं। डॉक्टरों की हैंडराइटिंग देखिए क्या कैसी होती है, गुल 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 लिखते, क्या लिखते पता ही नहीं चलता है। वो भी दर्शाते हैं उनके कंफ्यूज्ड माइंड को। आई लिखते पर बिंदी नहीं लगाते ऊपर, जे लिखते पर बिंदी नहीं लगाते। ये वो लोग होते हैं जो अपने जीवन में अपने काम अधूरे छोड़ते, शब्द लिखते पर शिरोरेखा रहती नहीं है, आधे आधे काम करते हैं। उसको ठीक करोगे तो वो भी ठीक होने लगेगा। इसलिए इस भट्टी से ये काम लेके जाना है। तो एक्टिविटी क्या है हमारी? एक रोज 12 खड़ी लिखना है बैठ के। आ, 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 पूरा पेज पर अ लिखो, या कभी कभी आ लिखो, ई ई क लिखो, अच्छे से लिखना क, दोनों क सेम आने चाहिए, ये ऐसा और ये ऐसा, ये छोटा ये बड़ा नहीं, आधा नहीं, प्रॉपर दो मात्रा, पहली छोटी दूसरी बड़ी। इस पे काम करते करते व्यक्तित्व बदलने लगेगा, ये आप देखेंगे अपने आप, क्योंकि लिखने का संबंध सबकॉन्शियस माइंड से है। सबने लिखा मैं आत्मा हूं, अभी लेफ्ट हैंड से लिखो मैं आत्मा हूं, नॉन डोमिनेंट हैंड, और उससे भी अच्छे से लिखना, ज्यादा सुंदर रीति। दिस हैंड, लेफ्ट हैंड, उसका वो नहीं है, है? तो हम कहाँ पर थे? साइलेंस। तो अपनी व्यस्त दिनचर्या में क्या करना है? बीच बीच में साइलेंस निकालना है। ऐसी साइलेंस भट्टी कभी होगी नहीं, और उसका इंतज़ार नहीं करना है कि साइलेंस भट्टी होगी, फिर हम जाएंगे, फिर साइलेंस करेंगे। आज हो गई ना अचानक। सबसे बड़ा साइलेंस तो मोबाइल हट जाना, आधा काम तो वहीं पूरा हो गया। हो गया कि नहीं? सबने लिख दिया लेफ्ट हैंड से, मैं आत्मा हूँ। तो अभी आपको सबसे बड़ा ये प्रैक्टिस है मैं आत्मा हूँ की। धीरज भाई वो है अभी भी रिंग्स की मंगा है ना, तो सबको देना है, कल देंगे। ठीक है, कल आज मंगा के रख लो, कल देंगे, वो बताएंगे आपको क्या करना है। अगला है ए, एस एन से क्या हुआ, निसंग की छह बातें हम लिख रहे हैं। पहला है अकेले हो जाना, निसंग हो जाना, कोई साथी नहीं चाहिए, क्योंकि जो साथी आएंगे बंधन बनेंगे और साथियों की डिमांड्स। उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी मांगे बहुत होती है। बाइबल में एक लाइन लिखी है, ही दैट इज मैरिड केयर्स फॉर हिज वाइफ दैट हाउ ही विल प्लीज हर, ही हु इज अनमैरिड केयर्स फॉर द लॉर्ड एंड हाउ ही विल प्लीज हिम। वो जो विवाहित है वो सोचते अपनी पत्नी को कैसे खुश करूं, और वो जो अविवाहित है वो सोचते भगवान को कैसे खुश करूं। क्राइस्ट अपने शिष्यों से कहता है, इफ ई लवेथ यू, इफ यू लव योर मदर एंड सिस्टर, ब्रदर फादर एंड मदर मोर देन मी, यू आर नॉट वर्दी ऑफ मी। इफ यू लव योर ब्रदर एंड सिस्टर मोर देन मी, यू आर नॉट वर्दी ऑफ मी। यदि तुम अपने लौकिक माँ बाप से मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो जाओ यहां से, मेरे तुम लायक नहीं हो। यदि तुम अपने लौकिक भाई और बहन से मुझसे अधिक प्यार करते हो तो जाओ उनके पास, तुम मेरे लायक नहीं हो। ये बाइबल के लाइन्स है। आई थाई लॉर्ड एम द जेलस गॉड, ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, मैं जो परमात्मा हूं और तुम्हारा खुदा हूं, बड़ा ईर्ष्यालु परमात्मा हूं। मैं परमात्मा कैसा हूं? ईर्ष्यालु। मेरे अलावा अगर तुमने किसी से प्यार किया तो देख लेना, फिर मेरे अतिरिक्त किसी से भी प्यार मत करना। एक बाप को याद करो बस, तुम्हारा किसी देहधारी से इश्क मोहब्बत ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब डुबोने वाले हैं। एक व्यक्ति को वैराग आता है, अपने गुरु के पास जाता है, कहता है मुझे संन्यास लेना है, मुझे वैराग है, पर एक बाधा है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है और बच्चे इतना प्यार करते हैं और माँ बाप तो पूछो मत, मैं कैसे उन सबको छोड़ दूँ और आपके शरण में आ जाऊँ। गुरु कहता है ठीक है, यही बाधा है, एक इतना सच्चा निस्वार्थ प्यार है उन लोगों का, ऐसी प्यारी पत्नी कहाँ मिलेगी किसको। गुरु कहता है ठीक है, ये लो दवाई, घर पे जाके इसको खा लेना और तुम मूर्छित पड़ जाओगे, तुमको सुनाई सब देगा पर लोगों को लगेगा तुम मर गए। वो जाता है, दवाई खाता है, मूर्छित गिरता है, सबको लगता है इनको क्या हो गया, मर गए। तो पत्नी रोने लगती है, छाती पीट पीट के रोने लगती है, बच्चे रोने लगते हैं, उसकी माँ रोने लगती है, पिता थे नहीं, सब रोना चालू होते हैं। उसी समय गुरु आ जाते हैं। गुरु कहते हैं इसका इलाज मेरे पास है, मेरे पास एक दवाई है, मैं वो दवाई इनको आधी खिलाऊंगा और वो दवाई दूसरे आप में से कोई एक खा लो आधी, तो वो व्यक्ति मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएंगे। अब शर्त इतनी है कि कौन आप में से तैयार होता है। अब तक सब रो रहे थे, एकदम रोना बंद। सबसे पहली नजर जाती है पत्नी की तरफ, सबसे ज्यादा वही रो रही थी। वो कहते हैं मुझे अभी बच्चों के संभाल करनी है, ये तो चले गए जिनको जाना था, संभाल तो मुझे करनी है ना बच्चों की। सब लोग माँ की ओर देखते, माँ एकदम ये हो जाती है, मैं बड़ी हूं, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, बेटे को जाना था वो तो चला गया, एक बेटा होता है। वो कहता अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मैंने देखा ही क्या है दुनिया में, पिताजी तो चले गए। वो सुन रहा है सब, और फिर कहते हैं चलो ठीक है। घर का रास्ता जो दरवाज़ा होता है छोटा होता है और चंदन का बना हुआ होता है, तो डेड बॉडी थोड़ी कड़क हो गई है, तो वो कहते हैं वो चंदन का दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा ये, नहीं तो बाहर नहीं निकलेगी डेड बॉडी। वो कहते नहीं 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 चंदन का दरवाज़ा वो मत तोड़ना। पत्नी कहती है इनके हाथ तोड़ दो ना, वैसे भी मर गए, हाथ काटो और निकालो बाहर। बस इतना सुनना सुनता है वो और गुरुदेव से कहता है चलो अलख निरंजन आदेश, निकलो अब, काम पूरा हुआ इधर का संसार का। तो पहला सूत्र है अकेले ही चलना है, निसंग एकला चालो रे, ज्योतिपुर दक्षिणा को एकला चालो रे, कविता है। इफ दे आंसर नॉट टू धाई कॉल वॉक अलोन, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है बंगाली में विथ इंग्लिश। इफ दे लीव यू इन द लर्च, अगर वो छोड़कर तुमको चले जाए, आंधी तूफान आ रहा है, ऑन दैट ब्लड ट्रॉडन पाथ वॉक अलोन, उस रक्त रंजित पथ से अकेला चलो, एकला चलो रे। ये पहला सूत्र है कुमार जीवन का। किस चीज को, वुमन आई डोंट नीड यू, हे स्त्री आई डोंट नीड यू, ओ मैन आई डोंट नीड यू, स्त्रियों की तरफ से। दोनों का मार्ग इंडिपेंडेंट हो। बारिश कितनी सुंदर है ना, जमीन भी कितनी सुंदर है ना, पर जब बारिश और जमीन मिलती है तो कीचड़ बनता है, ये ना भूलना। इसलिए मार्ग अकेले का ही है। एक शिकारी जंगल में खो जाता है, 3 दिन से जंगल में भटक रहा है, कुछ भी नहीं दिखता है उसे, कोई मनुष्य नहीं दिखता है, कोई परिंदा तक नहीं है जंगल में, भटक रहा है भटक रहा है भटक रहा है, कोई तो मिले। और अचानक देखता है एक व्यक्ति झाड़ के नीचे बैठा है, भाग कर जाता है, उससे मुलाकात होती है, वो भी एक शिकारी है जो 3-4 दिनों से भूखा है और भटक रहा है जंगल में, उसका भी कोई नहीं है। ये शिकारी और वो शिकारी दोनों मिलते हैं, अब दोनों साथ साथ भटक रहे हैं, पहले अकेला भटक रहा था, अब दो मिलके भटक रहे हैं। पहले एक भिखारी था, वो एक अकेला भीख मांग रहा था, फिर उसको दूसरा भिखारी मिलता है, अब दो भिखारी साथ साथ भीख मांग रहे हैं। संसार इसे ही विवाह कहता है। क्या कहता है? विवाह, साथ साथ बैठ के, ना इसके पास कुछ है ना उसके पास, ना वो उसको फुलफिल कर सकता है ना ये उसको फुलफिल कर सकती, दोनों ही अपूर्ण हैं, और दोनों को लगता है हम एक दूसरे के पूरक हैं। आई लव यू, यू लव मी, वी आर मेड फॉर ईच अदर, आई मिस यू, डू यू मिस मी, यस। अकेले मनमोहिनी दीदी थे यज्ञ में, मधुबन के एक बहुत अनन्य कुमार है, अभी भी है वो। एक बार आंगन में खड़े थे मधुबन के, पांडव भवन के सामने से एक बहन थी सेंटर की जा रही थी, तो वो भाई ने उस बहन जी से पूछा आप कहाँ से हो? पीछे मनमोहिनी दीदी थी। दीदी ने कहा शादी करनी है क्या? तुमको करना क्या है? तुम अपने काम से काम रखो। वो कहाँ से है, वो कहाँ रहती है, उसका क्या है, वॉट इज दैट टू यू, माइंड योर ओन बिजनेस। पहला सूत्र निसंग, दूसरा सूत्र इंद्रिय जीत, तीसरा सूत्र मौन, चौथा सूत्र अनासक्त। कैसे हो जाना है इस संसार में अनासक्त? जो भिखारी रहते हैं ना उन्हें कुछ नहीं मिलता है, जो भीख ही मांगते रहते हैं, प्यार दे दो, सम्मान दे दो, प्रशंसा दे दो, हमने इतनी सेवा की हमारा नाम तो लो। बहन जी ने सबका नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया, जबकि सबसे ज्यादा सेवा हमने की थी। बाइक पे कौन घूमा था इधर उधर? हमारा नाम ही नहीं लेते ये लोग, टेकन फॉर ग्रांटेड। क्या हम किसी को खुश करने के लिए सेवा कर रहे हैं या आत्मशुद्धि के लिए सेवा कर रहे हैं? प्रश्न यह है। अनासक्त वृत्ति, इसका अर्थ ये नहीं कि हम सूखे सन्यासी बन जाएं, सब कुछ कर रहे हैं पर भीतर से अनासक्त है, अनअटैच्ड। नेक्स्ट है निमित्त। ये एक ऐसा सूत्र है जिसको कूट कूट के अपने भीतर भरना है कि मैं केवल निमित्त हूं, अगर मैं नहीं रहूं तो कोई और ये चांस ले लेगा। मुझे अवसर मिला है सेवा करने का, ये भाग्य है मेरा। बाबा चाहते तो उसके पास तो हजारों लोग हैं, उसके पास लोगों की कमी नहीं है, वो एक को बुलाएगा तो 100 आ जाएंगे, पर उसने हमको चुना, ये हमारा भाग्य है, इसलिए उसको धन्यवाद। अ से और एक है अपरिग्रह। ये जैन धर्म में 5 महाव्रत में एक महाव्रत आता है, नॉन पोजेशन। बहुत अधिक संग्रह करके नहीं रखना है चीजों का, वस्तुओं का, जो है वो मुक्त हाथों से बांट दो। बहुत सारी चीजें, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करूँ, वो भी करूँ। हम एक बार भट्टी के लिए गए थे मलेशिया, वहाँ पर भट्टी एक आश्रम में थी, सेंटर पर नहीं थी, वो चिन्मय मिशन का आश्रम उन लोगों ने लिया था। सारे भाई बहनें वहाँ आए थे और वहाँ जो कमरे थे वो मिनिमलिस्टिक कमरे थे। मिनिमलिज्म अर्थात कम से कम चीज़ें थी वहाँ पे। उस कमरे अजीब से कमरे थे वो कमरा जिसमें खिड़की है, दरवाज़ा, एक टेबल है, बेड है, उसके ऊपर एक बेडशीट, बस कुछ भी नहीं कमरों में, कुछ भी नहीं। और जानबूझ के ऐसा किया गया था। जितनी अधिक वस्तुएं जमा होती है उतने वाइब्रेशंस डाउन होते हैं। हम देखते हैं कुछ कुमारों के कमरों में हम गए हैं, इतना कचरा भरा रहता है कमरों में। पहला तो सफाई उतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। वस्तुएं कहीं पर भी रखिए, टॉवेल लिया, गीला टॉवेल रख दिया बेड पर, ये जूते उधर, वो उधर, अलमारी में सब चीज़ें। तो यहाँ से जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? अपने कमरे को ठीक ठाक करना है, उसके वाइब्रेशंस स्ट्रांग हो, हर चीज़ को वहीं रखनी है जहाँ उसको होनी चाहिए, ढूंढना ना पड़े कुछ। अलमारियाँ जितनी हैं उसको ठीक करो। दूसरा, मोबाइल में इतने सारे ऐप खोल के रख देते हैं, वो अनइंस्टॉल करो फालतू वाले ऐप्स। कंप्यूटर का जो स्क्रीन है उसमें कितने सारे शॉर्टकट्स रखते हैं, इतने रखने की आवश्यकता है क्या? एक या दो रखो बस, बाकी सबको मिला के एक बड़ा फोल्डर में डाल दो उसको। पूरा कंप्यूटर भरा हुआ, पूरा मोबाइल का स्क्रीन ऐप से भरा हुआ, जिसमें ऐसे कितने ऐप्स हैं जो 1.5 साल से, 1 साल से, 6 मास से यूज़ ही नहीं किए, अनइंस्टॉल। और ये बहुत सारी एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, फेसबुक और इंस्टा और ये, इसकी हम चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा कम ही रखे तो अच्छा है, भटकाव बहुत है उसमें। अपरिग्रह, कम से कम चीज़ें, जो एक्स्ट्रा है उसको देखो कौन सी चीज़ किसको दी जा सकती है। एक्स्ट्रा चीज़ें हैं हमारे पास, एक्स्ट्रा जूते रखे हुए हैं, देखो किसको दे सकते हैं, हम तो यूज़ कर नहीं रहे, किसको दे दो, किसी को भी दे दो, ज़रूरी नहीं है कि वो कुमारी हो। ये जो ऐप्स जो इतने सारे यहाँ दिखते हैं उसके ऊपर भी धीरे धीरे उसको कम कर देना है। स्क्रीन पर जितना कम रखेंगे उतना अच्छा। लास्ट गुप्त, जी फॉर गुप्त। अपने पुरुषार्थ को थोड़ा गुप्त ही रखना है। जो जड़े होती है ना वो नीचे होती है, उनको अगर इच्छा होगी हम बाहर आ जाए तो लोग काट देंगे। इसलिए इस भट्टी से आपने जो कुछ सीखेंगे, वो नहीं जो हम बता रहे, अपने आप ही आपको टचिंग होगी क्या करना है। वो सब कुछ अगले 6 मास के लिए गुप्त ही रखना है, दूसरों के सामने प्रदर्शन नहीं करना है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ भी नहीं, चुपचाप इम्प्लीमेंट करते जाना है। गुप्त रहने में बहुत आनंद है, अपनी गुप्त भट्टी रखनी है। गुप्त एक्सरसाइज, अपने आप को छिपा देना है थोड़ा सा। जो जो हम नया सीखने वाले हैं वो तुरंत दूसरों को नहीं बताना है कि हम ये सीख रहे हैं, हम वो सीख रहे हैं, उसको क्या करना है, थोड़ा सा गुप्त रख देना है। तो हमने ये 6 बातें, 6 या 7 बातें देखी। ऑप्शन